भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य।
नमस्कार, ओम शांति। आपके स्वास्थ्य की, आपकी खैरियत की अनेकों शुभकामनाओं को लेकर हम साथ हैं आपके योग रहस्य में। दोस्तों, योग रहस्य में हम चर्चा करते हैं योग के ज्ञान की, विज्ञान की। यहां चर्चा होती है कि कैसे आपका जीवन, कैसे आपका स्वास्थ्य पूरा खिल सकता है, कैसे आपको आपके सपनों का संसार और स्वास्थ्य मिल सकता है। और योग रहस्य में हम योग के जो दीप हैं, स्वास्थ्य के दीप जलाते हैं अपने मेहमानों के जरिए, उनके अनुभवों के जरिए। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं उनसे। हमारे साथ हैं राजयोगी राजू भाई जी, जो कि माउंट आबू से पधारे हैं अमेरिका से। हमारे साथ है भ्राता राम प्रकाश जी, जो कि प्रोफेशनल इंजीनियर है, और भ्राता बाबूलाल जी, जो कि योगा के इंस्ट्रक्टर हैं। आप सभी का योग रहस्य में दिल से स्वागत है। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं चलता हूं राम प्रकाश भाई जी के पास, जो कि योगी भी हैं और इंजीनियर भी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एक इंजीनियर होने के नाते आप योग को किस नजर से देखते हैं, उसे कैसे लेते हैं?
मैंने शुरू शुरू में जब अपने यंग एज में था, कभी मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि मेरे को योग करना आता है या कभी कर भी सकता हूं। मेरे को पहली बार बताया गया कि 3 मिनट योग में बैठो, 3 मिनट में बुद्धि मेरी सारी तरफ चली गई, लेकिन जो कंसल्टेशन होनी चाहिए थी वहां नहीं हुई। लेकिन बाद में समझ आया कि आत्मा और जो शरीर है, ये दो चीजें हैं, जीवात्मा कहलाते हैं। तो जैसे शरीर के माता पिता हैं, वैसे ही जैसे शरीर का DNA मेरे माता पिता से मिलता है, हमारे हाव भाव मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, तो ऐसे आत्मा का माता पिता कौन है? वो है परमात्मा। हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि परमात्मा वास्तव में आत्मा है, लेकिन परम है वो। आखिर मेरे को ना, जब मैं ब्रह्मा कुमारी के पास आया तो मेरे को इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा, उनका संबंध पिता माता पिता और बच्चे के समान है। तो तब लगा कि जिस प्रकार से शरीर के माँ बाप को याद करना मुश्किल नहीं लगता है, ऐसे ही आत्मा के माँ बाप को भी याद करना मुश्किल नहीं है। वास्तव में वही योग है।
तो ध्यान में आपको सहज हो गया क्योंकि आपको संबंध मिल गया, तो कंसंट्रेशन की जगह एक रिश्ता जुड़ गया आपका।
एक रिश्ता। तो क्योंकि मैंने देखा, जब हम भगवान और भगत की बात करते हैं तो रिश्ता दूर का हो जाता है
जी,
लेकिन माता पिता के रूप में ये भी एक फीलिंग हुई कि जैसे हम कहते हैं कि आत्मा एक बहुत विकारी है, आत्मा में कोई गुण नहीं है, या हम भगवान के, जैसे भगवान के लिए कहते हैं हम आपके चरणों की धूल हैं, तो मैं कहता था कोई माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा कोई चरणों में पड़ा रहे?
बिल्कुल।
या कहें कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, तो वो कहेंगे आप तो मेरी आंखों के तारे हैं। तो वो प्यार और जो संबंध है ना, उसके नाते से बच्चा माँ बाप को ऑटोमेटिकली याद करेगा।
वैसे भी अक्सर ये कहा जाता है कि जो एक पानी के भंडार में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो पानी की छोटी से छोटी बूंद में भी वो प्रॉपर्टी है। अगर उस परम रूह के अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी है, हम उसके बच्चे होने के नाते हम उसके चरणों के दास भक्त नहीं बल्कि उनके बच्चे हैं और उनकी गुणों के अधिकारी भी हैं, और वो हम में है वो सब।
तो वही बस लगा कि क्लियर कट के जिस प्रकार से शरीर का DNA माता पिता से मिलता है, परमात्मा का DNA भी आत्मा में है। तो माना आत्मा जब सोल कॉन्शियस होती है तो वो DNA जो है अवेकन हो जाता है।
बिल्कुल।
तो वही फिर कैसे पता चलता है, चाहे वो DNA इस समय थोड़ा सा दबा हुआ कहें या डोरमेंट कहें, लेकिन जैसे ही सोल कॉन्शियस होते हैं तो वो अवेकन होने से हमारे में वो परमात्मा के गुण सहज ही फील होने शुरू हो जाते हैं।
तो आप कहना ये चाहते हैं कि जो आत्मा का DNA है, वो जो परमात्मा के गुण है, वही वो उसका DNA, जो उसके गुण या शक्तियां, जहां उसका स्वरूप है, जो وہ اسے ڈی این اے کہہ رہے ہیں. آپ ڈی این اے کو ذرا وستار سے بتائیے, آپ ڈی این اے کسے کہہ رہے ہیں, وہ کیا ہے ڈی این اے؟
ڈی این اے مانا جس پرکار سے پرماتما جیسے کہتے ہیں پیار کا ساگر ہے, شانتی کا ساگر ہے, تو میرا ڈی این اے بھی وہی ہم ماسٹر پیار کے ساگر ہیں,
سنیہ
کے ساگر ہیں. لیکن جب ہم باڈی کانشیس میں ہوتے ہیں تب وہ ڈی این اے ڈورمنٹ ہوتا ہے, سویا ہوتا ہے. لیکن جب ہم آتم ابھیمانی بنتے ہیں تو ڈی این اے جاگرت ہو جاتا ہے. پتا کیسے چلتا ہے؟ ہم کو اندر سے پیار کی, اسنیہ کی ایک نا کمفرٹیبل فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو ان نوئنگلی ہم واسطے میں یوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے لیے سمپلی جو یوگ ہے مانا گیٹنگ ان ٹیون, وہ ڈی این اے بھگوان کے ڈی این اے سے ان ٹیون ہو جاتا ہے, وہی یوگ ہے. اس سے آپ کو نا اپنے آپ ہی پیار اور خوشی کی انبھوتی ہونے لگ جاتی ہے.
بہت اچھا بتایا آپ نے راجو بھائی جی. رام پرکاش بھائی نے کہا کہ کس طرح سے ہمارا اور جو پرماتما میں ہماری بیچ میں ایک سمانتا ہے ایک پتا اور پتر کے یا بچے کے ناطے ہونے سے. آپ کو یوگ کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہوا ہے, آپ کو کبھی کچھ ایسی دیویہ انبھوتیاں ہوتی ہیں؟
ایسا ہے جب ہم اپنے سوروپ میں استھت ہوتے ہیں, آتمک استھتی میں بیٹھتے ہیں, تو پرماتما کا سوروپ بھی وہی ہے, جو وہ بھی ایک آتما ہے جیسے بھائی صاحب نے کہا. تو میں ایک آتما ہوں یہ نشچے کرتے ہی اس پتا کی اسمرتی آنے لگتی ہے.
جی
ڈی این اے کی بات جو کہی ہے کہ اس کے گن جو ہیں اس میں ہماری سمانتا آتی جائے.
جی
تو راج یوگ مانا ہی کوئی یوگ مانا کوئی ہٹ نہیں ہے, ویایام نہیں اس میں ہے, لیکن یہ یوگ دھیان یوگ ہے.
تو میں ایک بات آپ سے جاننا کو, آپ نے کہا جیسے ڈی این اے کی بات کہی, آپ نے کہا سمانتا آتی جائے, ہم واسطو میں سب ہمارے گن ایشور کے سمان ہیں یا ہمیں سمانتا لانی ہے؟
نہیں ہیں,
لیکن ہم بھول چکے ہیں. آپ کہیے
ویمان کے کارن
پرتیکش نہیں ہے, وہ اجاگر نہیں ہوئے ہیں
اپنی وسمرتی ہونے کے کارن.
جی
دیہ ویمان میں جب آتما آ گئی اور وہ بھول گئی کہ میں کون ہوں,
جی
تو پرماتما کے جو گن تھے وہ اس سے ولپت ہوتے گئے. ابھی پھر وہ سوروپ میں جب استھت ہوتی ہے کہ میں ایک آتما ہوں, میں شریر نہیں ہوں, تو آتما کے گن پھر سے جاگرت ہونے لگتے ہیں,
تو پرتیکش ہونے لگتے ہیں, وہ باہر آنے لگتے ہیں اس روپ میں.
لیکن جب اس کے ساتھ پرماتما کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے,
جی
تو جیسے پاور ہاؤس سے جب ہمارا کنیکشن جڑتا ہے تو پاور ہمارے اندر آتی ہے, ایسے ہی جب پرماتما پاور ہاؤس ہے سرو گنوں کا سرو شکتیوں کا, اس کے ساتھ ہم کچھ منٹ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, اس کے سنیہ میں کھو جاتے ہیں, تو اس کی سب شکتیاں ہمارے اندر ٹرانسفر ہونے لگتی ہیں. تو جو کمی آ گئی ہے اس کو ہم میڈیٹیشن کے دوارا بھر سکتے ہیں,
بھر سکتے ہیں, بلکہ وہ سمانتا آتی جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ بھرتے جاتے ہیں, آپ نکھرتے جاتے ہیں, آپ کے گن باہر اجاگر ہو کر پرتیکش ہونے لگتے ہیں,
وہ پھر کرم میں آ جاتے ہیں, ہمارے بول میں, ہماری درشٹی میں, ہمارے ویوہار میں وہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ یہ پیار کا سوروپ ہے,
جی
یہ شانتی کا سوروپ ہے.
بہت اچھی بات ہے کہ وہ خالی ہمارے تک نہیں ہوتے لیکن وہ باہر بہتے ہیں اور آس پاس کے آپ کے واتاورن کو, لوگوں کو, پرکرتی کو, ہر چیز کو پربھاوت کرتے ہیں.
اگر ہم یوگ کر رہے ہیں اور ہمارے ویوہار میں شدھتا نہیں ہے, ہمارے کرم میں شدھتا نہیں ہے, تو وہ یوگ کا پرینام نہیں ہے.
اس کا مطلب اگر یوگ اور دھیان کیا جائے اور ہر ویکتی جو ہے وہ ایک امڑتا ہوا پیار کا, سکھ کا, شانتی کا, اگر ایک ندی کی طرح, ایک دریا کی طرح بہنے لگے تو سارا سنسار ہی ایک سکھ کا سنسار ہو سکتا ہے,
سنسار بن جائے.
تو پر ہر ایک کو خود کو بھرنا ہے, اس سمانتا میں آنا ہے, وہ رشتہ جوڑنا ہے تاکہ وہ باہر آپ سے ہر چیز کو پربھاوت کر سکے. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. دنیا میں اکثر ایسے ایفیکٹ کہتے ہیں نا, ایک چیز جو ہے دوسرے کو ایفیکٹ کرتی ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے. بابو لال جی آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یوگا کے انسٹرکٹر ہیں, آپ خود بھی دھیان کرتے ہیں کیا ان ویام کے ساتھ ساتھ؟
ہاں جی میں خود بھی یوگ کا دھیان.
تو جب یوگا اور دھیان کو ملایا جاتا ہے تو اس کا آپ کو بہتر پرینام ملتے ہیں اپنے اوپر, اپنے اسٹوڈینٹس کے اوپر
ڈبل اس کا بینیفٹ ہمیں مل جاتا ہے.
جی
ایک تو آتما کے اندر جو وکاروں کی پرویستا ہو گئی ہے اسے ایزیلی طرح ہمیں وکاروں سے مکتی مل جاتی ہے.
جی
اور شاریرک ویام کے دوارا ہم تندرست, دونوں ویام ضروری ہے, شاریرک ڈرل اور روحانی ڈرل, دو طرح کی ڈرل ہوتی ہے, ایک شریر کا یوگ ڈرل اور دوسری روحانی ڈرل جو آتماؤں کی ایکسرسائز. تو پرماتما کی یاد میں کرنے سے ہمیں ڈبل ایکسٹرا بینیفٹ ملتا ہے, اس کا ابھی تک ہم نے بہت اچھا ریزلٹ لیا ہے. प्रैक्टिकल में तो मैंने करके देखा है, जब हम योगा व्यायाम करते हैं, जब हम सवासन करते हैं, तो वह सवासन में हमारे थिंकिंग होती है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा की सर्वशक्तियां मेरी बॉडी के अंग अंग में समा रही है, और हमारा एटीट्यूड होता है कि परमात्मा की सर्वशक्तियां हमारी बॉडी के अंग अंग में पड़ रही है, जिससे हमारे शरीर की कई प्रकार की पीड़ाएं, कई प्रकार के रोग इजीली तरीके से हमसे सहज दूर हो जाए।
हम चाहेंगे बाबूलाल जी आप हमें कुछ ऐसे और आसन कुछ ऐसा करके बताइए, कुछ व्यायाम जो, और उसके साथ योग को जोड़ के बताइए, जिससे हम डबल बेहतर बेनिफिट हम ले सकें।
आज मैं आपको बहुत सूक्ष्म व्यायाम की ओर ले चलता हूँ, जिनका बहुत ही शानदार अभी तक रिजल्ट मिला है। वर्तमान समय देखा गया लोगों को घुटने का प्रॉब्लम और पिंडलियां के प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। आज मैं ऐसा सूक्ष्म व्यायाम कराने जा रहा हूँ आपको, जिससे घुटने का प्रॉब्लम, पिंडलियां के प्रॉब्लम, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम, साइटिका के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। और ऐसा मैं व्यायाम कराने जा रहा हूं जो बचपन में आपने बहुत किया इस एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है बच्चा एक्सरसाइज। बच्चों का भी घुटने पिंडलियां का दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता, वो नेचुरली एक्सरसाइज करते हैं, बच्चा एक्सरसाइज। तो आज मैं ऐसा सूक्ष्म व्यायाम कराने जा रहा हूँ, बचपन में आपने बहुत इस एक्सरसाइज को किया है, मैं तो सिर्फ आपको इस सुबह दिला रहा हूँ। बच्चा एक्सरसाइज करने से घुटने पिंडलियां के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। बच्चा एक्सरसाइज आराम से बैठ जाएंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर बैठ जाएंगे दंडासन में। बच्चा एक्सरसाइज का पहला स्टेप, बच्चा रोता है तब यही एक्सरसाइज करा, आपने देखा होगा सभी ने, बच्चा रोता है तब ये एक्सरसाइज करता है, बच्चा एक्सरसाइज का पहला स्टेप। ये घुटने पिंडलियों के लिए बहुत ही बेटर होता है पहला स्टेप, ये वाला पोज घुटने पिंडलियों के लिए बहुत ही बेटर होगा बच्चा एक्सरसाइज का पहला स्टेप। धीरे धीरे हर एक कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर यूथ से लेकर ओल्ड से लेकर सब इसे करके पूर्ण लाभ ले सकते हैं। फिर बच्चा एक्सरसाइज का सेकंड स्टेप होता है, बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है तो एक्सरसाइज को भी वो चेंज कर देता है, आपने भी किया इस एक्सरसाइज को, बच्चा जब ज्यादा रूठ जाता है तो एक्सरसाइज को भी चेंज कर देता है, ये वाला पोज देखा हुआ आपने, बच्चा रोता है तब यही एक्सरसाइज करता है, घुटने पिंडलियां के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे सेकंड स्टेप के द्वारा।
जो इसको करेगा एक्सरसाइज को, उसको करते हुए रोना है कि हंसना है या मुस्कुराना है, क्या करना है?
अब रोने का समय निकल गया, अब तो हंसने का समय चल रहा है,
बच्चा रो के करता लेकिन करने वाले को मुस्कुरा के करना,
उसको मुस्कुरा के करना चाहिए। इसके पश्चात घुटने पिंडलियां के और प्रॉब्लम दूर करने के लिए अब हम चलते हैं बाल जंपिंग एक्सरसाइज। जैसे बच्चा बाल को खेलता है ना, तो इसे घुटने पिंडलियां के तो सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे, पर जिनको स्यूडो मस्कुलर एड्रोफी का प्रॉब्लम हो वो भी आपका दूर हो जाएगा। हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन ना होने के कारण सारी बहुत सारी नसियां पर इकट्ठी होकर गुच्छा बन जाता है, बहुत सारों को ये प्रॉब्लम होता है। ये एक मास 100 मास करने से बाल जंपिंग एक्सरसाइज के द्वारा पूरी पिंडलियां बिखर के वापस पिंडलियां प्लेन हो जाएगी, ये वाला पोज इस पोज में करेंगे। धीरे धीरे जिनको घुटने में दर्द होता है वो इस तरह से करेंगे,
उसको मारना नहीं,
मारना नहीं है उनको, ये वाला पोज। और जिनको कोई प्रॉब्लम वो इस तरह से भी कर सकते हैं ये पोज, पर जिनको घुटने में दर्द होता आराम से घुटने के ऊपर हाथ रख लेंगे, ये वाला पोज। धीरे धीरे उनको इसी पोजिशन में करना हो, कम से कम 10-12 बार तक इसका अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। अब मैं ले चलता हूं आपको अगला स्टेप की ओर, बैठ जाएंगे अब सुखासन में। दो स्टेप और मैं आपको बताऊंगा, रीढ़ की हड्डी कमर के भी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल और कमर की एक्स्ट्रा चर्बी भी इससे फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज का नाम है कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज। तो खा पी चर का हमने बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ा ली है, इसको फिनिश करने के लिए कपड़ा निचोड़ एक्सरसाइज बहुत ही बेटर होता है। सुखासन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठने के पश्चात धीरे धीरे जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम हो वो इसका अभ्यास ज्यादा ना करें, या करें तो बहुत ही स्लोली धीरे धीरे करेंगे। सुखा आसन में बैठकर बॉडी को लेफ्ट और राइट तरफ मोड़ करते हुए नासिका भूसे टच करेंगे धीरे धीरे, ये वाला पोज, ये पोज। यही पोज जिनको बैक पेन का प्रॉब्लम, प्लीज वो हल्का सा करें, इतना ही आए, उनको जल्दबाजी नहीं करना होगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास वो बढ़ाते जाएंगे, एक दिन तो आपका नासिका कपाले से मुंह पर टच होने लग जाएगा, यही पोज। इससे रीढ़ की हड्डी कमर के सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल कमर की एक्स्ट्रा चर्बी से फिनिश हो जाती है, फिर बैठ जाएंगे दंडासन में, इसे बोलते हम दंडासन। पोज वही रहेगा, सिर्फ पंजे को नहीं गिराना होगा, सेकंड स्टेप पे वही वाला पोज। यही पोज धीरे धीरे इसका अभ्यास करें, पर पहले दिन में अटेंशन नहीं है, प्लीज नासिका भू से टच करने की कोशिश ना करें,
झटका नहीं मारना है,
झटका नहीं मारना है, बहुत इजीली अभी इतना करें धीरे धीरे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अभी कड़कपन है और योगा एक्सरसाइज आपकी बॉडी के अंदर क्या लेकर आएगा, फिजिकल लचीलापन लेकर आएगा, तो धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास हमें बढ़ाना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी इन सुंदर एक्सरसाइजेस के लिए, बहुत अच्छी हैं, हमें ये बचपन में भी ले जाएंगी और हमें बचपन जैसा स्वास्थ्य भी देंगी, हमें तंदुरुस्त भी रखेंगी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज योगा की, इसके द्वारा आप बचपन की सुखद अनुभूतियों में लौट सकते हैं, बचपन की ऊर्जा और स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। देखिए योग कहता है कि जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर आप वापिस पीछे लौट सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। आज आपकी जो भी अवस्था है, जो भी स्थिति है, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, तैयार रहिए, बस शुरुआत कीजिए और अपनी मनोवस्था को वहीं ले जाइए कि जैसे आप बचपन में खेलते थे, उछलते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। ये सुंदर अनुभूतियां जो मन की अनुभूतियां हैं वो आपके तन पर भी प्रभाव डालेंगी और आपका तन और बेहतर होगा। तो राम प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सब एक्सरसाइज देखते हुए क्या क्या ख्याल आ रहा था आपको?
मेरा जो है जीवन जो है, मैंने ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की है, मैंने अपने कर्म को ही एक्सरसाइज का रूप दे दिया है। जैसे मेरे को शुरू से करीब 40-45 वर्ष हुए हैं जब से मैंने योग का अभ्यास करना शुरू किया, छोटे छोटे काम करना, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पोछा लगाना, मैंने देखा उसमें सारी एक्सरसाइजेज आ जाती हैं
जी।
तो लाइफ में मैंने क्या नोट किया कि जब मैं छोटे छोटे काम करता हूं, एक तो सब दुआएं मिलती हैं और दूसरा हम अपने आप को कहते हैं जमीन पर रहते हैं, कोई हमारे कोई ईर्ष्या नहीं करेगा, और तीसरा हमको ये लगता है कि उससे आपका तंदुरुस्ती जो बनी रहती है। तो मैंने लाइफ में क्या देखा कि वास्तव में योग का जो, क्योंकि इंजीनियर होने के नाते हम देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, तो ज्ञान और योग की एप्लीकेशन है कर्म। कर्म में उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कोई कर्म के दो पहलू होते हैं, एक है फिजिकल कंपोनेंट, जो जैसे आपने तन मन धन लगाया या आपने समय लगाया, उसका रिजल्ट क्या निकला, फिजिकल निकलेगा। लेकिन दूसरा स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, आपकी उस समय फीलिंग्स क्या थी, खुश थे या गुस्से से किया, आपने एक अच्छा काम किया लेकिन गुस्से से किया, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। एक आपने छोटा सा अच्छा काम किया लेकिन प्यार से किया
जी,
तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मेरे को लगा एज एन इंजीनियर कि जब हम कहते हैं ना कर्मों का फल, जितना हम कर्म करेंगे उतना मिलता है, लेकिन कर्म का जो फल मिलेगा दोनों को जोड़कर मिलेगा, कितना फिजिकल किया कितना स्पिरिचुअल।
उस समय फीलिंग क्या थी आपकी, तो जैसे एक्सरसाइज के लिए कहा जाता है कि उसे अच्छी मनोवस्था में कीजिए, उसे प्रसन्नचित रहकर कीजिए, तो यदि छोटे छोटे जो घर के काम है वो सब एक्सरसाइज की तरह ही है, झाड़ू लगाना, बैठ के करना, यदि वो अच्छे प्रसन्नचित मन से किया जाए, अच्छी फीलिंग के साथ किया जाए, तो वो भी व्यायाम का काम करते हैं और आपको तंदुरुस्त रखती हैं।
तो एक तरफ फिजिकल भी अच्छा रहा, लेकिन दूसरी दोस्तों की दुआएं मिली तो हमको खुशी मिलती है।
जब आप दूसरों की सेवा करते हैं, किसी को सहयोग देते हैं, तो उससे भी लाभ है,
प्यार मिलता है। तो कहते हैं ना, लव जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी, हैप्पीनेस जनरेट्स एनर्जी इन द बॉडी। देखो कभी ऐसा चांस होगा बिल्कुल थके हुए हैं, किसी ने आपको बड़े प्यार से कहा कि प्लीज आप ये मेरा काम कर देंगे, आप थके हुए हैं फिर भी कहते हैं चलो मैं कर देता हूं, तो करने के बाद जो उनकी दुआएं मिलती है, उनका प्यार आपको महसूस होता है और आपको लगता है आपकी थकावट भी खत्म हो गई है। तो वो दो घंटे जो आपने काम किया, वो एनर्जी कहां से आई बॉडी में, प्यार से।
तो आपका कहने का मतलब अगर प्यार एनर्जी जनरेट करता है, तो जो नफरत है, ईर्ष्या है, वो एनर्जी दूसरे की कम भी करती होगी जरूर।
डेफिनेटली वही तो आज हो गया है कि नेगेटिव एनर्जी, लोग थके थके क्यों रहते हैं, ज्यादातर देखेंगे 80-90% कोई डिसएग्रीमेंट होगा, ईर्षा द्वेष होगा, किसी के प्रति नेगेटिव देखेंगे, उससे वो जो एनर्जी बॉडी की भी खत्म होती है, आत्मा की भी खत्म होती है, तो काम करने का दिल
भी
नहीं करता।
तो योग ये भी सिखाता है कि आप अपने साथियों सहयोगियों के साथ कैसे एक अच्छी एनर्जी भर के चल सकते हैं, ताकि जो हमारे आसपास एक अच्छी ऊर्जा भरी रहे, और हम जो टीम वर्क में काम करते हैं वो जल्दी अकम्प्लिश हो सकता है प्यार की एनर्जी से।
तो योग की जो एनर्जी, प्यार, खुशी जो आपको मिलता है, तो दूसरों से भी जब आप बात करते हो, प्यार खुशी से करते हो ना, वो भी आपके पास ना बहुत कोऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है।
तो राजू भाई, क्या लगता है आपको, कितने प्यार से बात करनी चाहिए, कैसी भावनाएं रखनी चाहिए जो हमारा व्यवहार और प्रेम युक्त हो जाए?
उसके लिए ऐसा है कि व्यवहार प्रेम युक्त तभी बन सकता है जब हम उसकी विशेषताओं पर ध्यान दें। अगर व्यक्ति हमारे साथ काम कर रहा है और उसकी हम कमियां ही देखते रहेंगे तो प्यार हमारे अंदर जनरेट ही नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारे साथी हैं, जिनके साथ हमारा कर्म चल रहा है, जो हमें सहयोग दे रहे हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, हम अपना एक लक्ष्य रखते हैं। हमारे पास भी डिपार्टमेंट्स हैं, 7-8 लोग हमारे साथ काम करते हैं, तो मैं जानता हूं इस व्यक्ति की ये विशेषता है, और उस विशेषता को देख करके जब हम उसे काम लेते हैं तो बड़ी खुशी से वो करता है, उसके प्रति हमारा भी प्यार जागृत होता है और उसके अंदर भी रहता है कि भाई साहब को हमारी विशेषताओं का पता है
जी।
तो अगर हमको ग्रुप में प्यार से सबसे सहयोग लेना है, सबको एक साथ यूनिटी में मिला करके चलना है, तो जिसकी जो विशेषता है उसको देख करके उसके साथ व्यवहार करना, उसको वही कार्य देना जिससे उसके अंदर भी रहे कि हमारी विशेषताओं का यूज हो रहा है।
और आप जब किसी की विशेषता को देखते हो तो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, मेरी काबिलियत को सराहा जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। और ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि उससे उनकी शक्ति भी बढ़ती है, और
क्योंकि योग माना कर्म कुशल
जी,
योगा कर्म कुशलम, तो अगर योग है तो हमारे कर्म में कुशलता आती है,
तो व्यवहार भी कर्म ही है जिसमें
कुशलता का आधार है। हमारा संबंध प्रेम पूर्वक हो, लेकिन प्रेम पूर्वक संबंध का आधार भी है हम हरेक के गुणग्राही बने
जी। योग हमें अंतर्मुखी भी बनना सिखाता है, तो गुणग्राही भी बनाता है, और हमारा दृष्टिकोण कितना अगर अच्छी चीजों पे रहता है, ऐसे मैंने सुना है कि यदि आप अच्छी चीजों पे नजर रखते हैं वो आप में आने लग जाती हैं, वो आपकी अच्छी चीजें सहयोगी हो जाती हैं। तो यदि हम गुण को किसी को देखते हैं तो जरूर उसके गुण से सहयोग भी ले सकती, क्योंकि आपने उसे देखा। पहला काम है आप किसी के गुण को देखो, कार्य में तो बाद में ही लगेगा,
हमारे वाइब्रेशन वो कैच करेगा सामने वाला।
बिल्कुल बिल्कुल।
अगर मैंने आपकी विशेषता को देखा तो हम बोलें या न बोलें, वर्णन करें या न करें, लेकिन हमारी भावनाएं आपको टच होंगी, इनको हमारी विशेषताओं का पता।
तो वाणी से पहले हमारी जो भावनाएं हैं वो दूसरों तक पहुंच जाती है। तो भावनाओं को, अपने अंदर के विचारों को सही रखना, उन्हें अच्छा रखना, शुभ रखना बहुत जरूरी है।
वो भी योग ही हमको सिखाता है
जी। योग कितनी गहराई तक ले जाता है कि ये खाली एक एक्सरसाइज तक नहीं है, बल्कि जीवन की जो अंदर की एक्सरसाइज है, अंदर से भी हमें मन के रूप से भी कितना स्वस्थ बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है, बेहतर बनाता है। ये तो आप जैसे योगियों से मिलकर ही एक एक उसकी परत खुलती जाती है, तो पता लगता है कि इसकी गहराई क्या है। तो आइए योग के और कुछ अनुभवों को जानते हैं एक राजयोगी के द्वारा, कि कैसे हम योग के और बेहतर अनुभव पा सकते हैं।
भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिनका सारे विश्व पर प्रभाव है, और उनका कारण है राजयोग। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोग की शिक्षा देती है। हम जानते हैं कि योग हमारे भारतीय संस्कृति की देन है, और योग के द्वारा व्यक्तियों ने अनेक प्रकार की सिद्धि और स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। पर साथ साथ राजयोग का अभ्यास केवल आसन और प्राणायाम के साथ, एक संकल्प से, विचारों से, परमात्मा के साथ की कनेक्शन को, संबंध को राजयोग कहते हैं। विशेष करके ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर जो राजयोग सिखाया जाता है वो मन के आधार पर है। राजयोग उनको कहते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं के राजा, अर्थात हम अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति अपने अंदर की जो भी कमी है, कमजोरी है, उनको देखना सीखता है, और देख करके उसको परिवर्तन करने की क्षमता राजयोग के अभ्यास से आती है। इतने सहज रूप से ये राजयोग सिखाया जाता है, जो हर व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति ये राजयोग सीख सकते हैं और राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं। आज व्यक्ति, परिवार, समाज और विश्व के अंदर जो आवश्यक है वो ये है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मूल्यों को धारण करे। राजयोग का अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिनके द्वारा व्यक्ति स्वयं का राजा बन सकता है, कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, अपने अंदर जो भी कमी है, कमजोरी है, उनको देखना सीखता है और देख करके उसको परिवर्तन करने की एक आंतरिक शक्ति, इनर विल पावर उसको मिलता है। हमने देखा है कि इवन जो भी बहुत समय के व्यसन होते हैं, वो व्यसन के ऊपर विजय प्राप्त करना भी राज्यों के द्वारा सीखते हैं। हमारे संपर्क में आए हुए कई भाई बहनों ने राज्यों के द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्राप्त किया है, मन शक्तिशाली बनता है, शांत बनता है, सकारात्मक बनता है, संसार के परिवार के संबंधों में परिवर्तन आ जाता है, सकारात्मक बनते हैं और एक आध्यात्मिक चेतना को जानने के कारण उनके चेहरे पर, उनके चलन के अंदर एक आमूल परिवर्तन आ जाता है। मुझे लगता है कि आज का समय ये पुकार रहा है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर योग और राजयोग का अभ्यास जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, आप अपने जीवन से जो भी चाहते हैं वो उस पार है, और जो उस पार ले जाए योग, वो पतवार है। बस आपने अपनी हिम्मत को, अपनी कोशिश को रखना बरकरार है, तो समझिए वो सामने आपके सपनों का संसार है। आज तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले योग रहस्य एपिसोड में हम और योग के सूक्ष्म अनुभवों को, उसकी गहराई को आप तक के लिए कराएंगे। आज के लिए आपसे कहते हैं इजाजत दीजिए, जल्दी होगी मुलाकात। ओम शांति, नमस्कार।